तेरी यादों के सिवाय और कोई सहारा नहीं, एक तेरी यादों के सिवाय और कोई सहारा नहीं। तुझे भूल कर जिंदा रहूं, दिल को ये गवारा नहीं। ए दुनिया तुझे याद अब करूं भी कैसे, ए दुनिया तुझे अब याद करूं भी कैसे। ये जान भी प्रभु की है, दिल भी अब हमारा नहीं, दिल भी अब हमारा नहीं। दुनिया में दिल की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ मानी जाती है। अगर किसी से दिल लग जाए तो भी तकलीफ, दिल काम करना बंद करे तो भी तकलीफ, ब्लॉकेज हो जाए तो भी तकलीफ। लेकिन प्रभु के घर में एक ऐसे श्रेष्ठ रतन है जो राजयोग के प्रयोग द्वारा दिल की सभी ब्लॉकेज को निकालने का सफल प्रयोग कर चुके हैं और सभी के जो दिल हैं, जो बीमार हैं, उनको दुरुस्त करते हैं। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ हस्ती हमारे बीच, हमारे सामने हैं। हम सभी आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी 1986 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए। 1995 से आप अपनी सेवाएं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में दे रहे हैं। आपने MBBS मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल दिल्ली में MD रहे और आपके श्रेष्ठ कार्यों के लिए आप कई अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में आप कैट ग्रुप का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन करते हैं और ट्रॉमा सेंटर आप सभी शायद देख के भी आ चुके होंगे। तो आप ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर अभी हैं और आज जो हमारा विषय है, सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता स्थिति द्वारा मनसा सेवा। तो जब मनसा सेवा करनी है तो मनसा की स्थिति बहुत बेहद की होनी चाहिए, बेहद की दिल होनी चाहिए। तो कैसे हम मनसा सेवा करें, इस विषय पर प्रकाश डालने हमारे बीच आदरणीय भ्राता जी हैं और हम उनके द्वारा सुनेंगे कैसे हम फरिश्ता स्थिति द्वारा सेवा करें। आदरणीय भ्राता जी,
आज का विषय है सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता स्थिति द्वारा मनसा सेवा कैसे करें। मैं चाहूंगा कि अगले लगभग एक घंटे में हम अपने मन बुद्धि को पहले इतना एकाग्र कर लें कि जो भी हम चिंतन करें वो एक्यूरेटली हमारे बुद्धि या दिल में उतर जाए। चले हम थोड़ी देर के लिए अभी जिसने मोबाइल एक घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दें, जिसके भी मोबाइल ऑन है वो स्विच ऑफ कर दें सिर्फ एक घंटे के लिए, बाद में दोबारा खोल लेना। और अपने एक मिनट के लिए अभी हम मन बुद्धि को एकाग्र कर देते हैं सब बातों से स्विच ऑफ करके, सिर्फ मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, सात गुणों का स्वरूप हूं और परमात्मा पिता शिव बाबा वो सात गुणों का सागर है। तो सात गुण मुझ आत्मा में आ रहे हैं, मुझसे होते हुए सारे शरीर में जा रहे हैं और सारे शरीर से बाहर निकल के एक आसपास आभा मंडल बनता जा रहा है। चलिए एक मिनट के लिए सभी मन मोदी को एकाग्र कर ले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, क्योंकि बिना एकाग्रता के सफलता नहीं होती है। एक मन बुद्धि को पहले पूरी तरह एकाग्र कर ले। Thank you. चलते हैं क्योंकि समय की समीपता के अनुसार समय प्रमाण बाबा के हमको इशारे बहुत मिल रहे हैं। तीनों मुरलियां जो बाबा की चली हैं उनसे हमें बड़ा क्लियर इशारा मिल रहा है कि अभी समय परिवर्तन होने का आ रहा है, रादर आ ही गया है। तो अभी हमको जैसे कहते हैं ना, अगर सारा साल ना भी पढ़ाई की हो तो एग्जाम के पहले जो छुट्टियां मिलती हैं एग्जाम की तैयारी करने की, महीने की तैयारी में के छुट्टियां मिलती हैं, उसमें भी अगर कोई दिल से पढ़ाई कर ले तो भी फर्स्ट आ सकता है। ऐसा होता है ना कई बार, सारा साल ना पढ़े हो तो भी आखिरी महीने में पढ़ाई करके पास तो हो ही सकते हैं किंतु फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो चलिए हम सच्चा ब्राह्मण जीवन किसे कहेंगे, पहले हम इस पे जाते हैं। मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है? हम पहले मनुष्य थे, हमारा लक्ष्य तो हम सभी जानते हैं मनुष्य से देवता बनना। तो पहला स्टेप है मनुष्य से ब्राह्मण बनना। मनुष्य का अर्थ है मन के वश में, मनुष्य माना मन जमा उष्य, अगर संस्कृत में लें तो इसका कहा जाएगा मन के वश में, अर्थात मन में जो भरा हुआ है। अगर मन की परिभाषा लें, मन किसे कहते हैं, बाबा ने 31 दिसंबर 1999 को मुरली में मन के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, अर्थात लास्ट सेंचुरी का आखिरी दिन, कि मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है, मन में चार बातें हैं। पहली है स्मृति, स्मृति माना यादें मेमोरीज। फिर है वृत्ति, वृत्ति माना दृष्टिकोण नजरिया एटीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। फिर है भावना अर्थात इमोशंस, और चौथा है संकल्प विचार थॉट्स। ऐसे इसे इंग्लिश में करें अगर उल्टा पढ़ते हैं, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज, तो इसका क्या बन जाता है, पहला वर्ड ले लें तो टीम है ना। तो मन माना टीम, ठीक है। स्मृति जो होती है, स्मृति हमारे अंदर तक होती है, स्मृति मेरे अंदर रहती है, हर मनुष्य के अंदर रहती है, किंतु स्मृति से स्थिति बनती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर किसी की स्मृति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो स्थिति भी ऐसी बन जाती है। कोई अपने को डॉक्टर समझता है तो वो उसकी स्थिति कैसी बन जाती है, डॉक्टर जैसी, वो डॉक्टर डॉक्टर की उसके काम करने की उसके अंदर जो समर्थी आ जाती है। तो स्मृति से समर्थी स्थिति बनती है और स्थिति से समर्थी आती है। और स्मृति क्या है, बेसिकली जो चीज हम एक अंदर सिस्टम बना हुआ है, जो भी हम इन कर्मेंद्रियों से करते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं खाते हैं सूंघते हैं या हाथ पैर से कर्म करते हैं, वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता रहता है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। ये नेचुरल लॉ बना हुआ है। इस जन्म का रिकॉर्ड है, पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है, वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड रहता है। किंतु जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, पांच महीने के बाद आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, 20 हफ्ते जब गर्भ होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो जैसे अब आपको यहां पर, जब आप यहां पर आए, मान लीजिए आपको डायमंड हाउस में रूम मिला, तो आप जब आप आए तो अपने बैग में जो सामान था आपका, उस सामान को आप निकाल करके कुछ कपड़ों को अलमीरा में रखा, कुछ को बाथरूम में रखा, कुछ को टेबल पर रखा, कुछ यहां 7 दिन में कुछ लेंगे और कुछ देंगे भी, कुछ खरीद के भी लेके जाएंगे जाते समय, यहां लिया दिया जो भी लिया, सूक्ष्म भी लिया स्थूल भी लिया, सूक्ष्म भी दिया स्थूल भी दिया, और जाते समय क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ पैक करके वापस ले जाएंगे। इसी तरह से जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, पिछले जन्मों से सब मन बुद्धि संस्कार साथ लेकर के आती है। जब आत्मा शरीर के बाहर है तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है। मैं थोड़ी सी बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए, जब हमें महान बनना है ना, महान बनने के लिए हमें महीनता में जाना होता है, ज्ञान की बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, ज्ञान की गहराई हमें समझ में होनी चाहिए, तभी हम ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, तभी हम ज्ञानी तू आत्मा बन के अच्छी योगी तू आत्मा बन सकते हैं, और अच्छी योगी तू आत्मा तभी धारणा कर सकती है, सही प्रैक्टिकल धारणा कर सकती है, और प्रैक्टिकल धारणा मूर्त आत्मा ही सेवा कर सकती है, यथार्थ सेवा, जिसे बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा तीनों कंबाइंड सेवा करो, यथार्थ सेवा, आपके हर संकल्प में सेवा समाई हो, हर श्वास में सेवा समाई हो, हर कर्म में सेवा समाई हो, हर बोल में सेवा समाई हो, तो वो तब हमारी स्थिति निरंतर सेवाधारी वाली स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए ज्ञान की गहराई, इसको हम थोड़ा समझें, गहराई में जाएं, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब आत्मा आई अंदर, यहां पर भृगु के मध्य आके बैठते, दोनों भृगु के मध्य में आकर के, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन्स, राइट और लेफ्ट ब्रेन का सेंटर है, और एक तरह का दोनों ब्रेन्स की एनकोडिंग यहां होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हाइपोथैलेमस में आती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स में दोनों ब्रेन्स का, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहलाती है, अर्थात उससे ऐसे केमिकल निकलते हैं, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे रस निकलते हैं जो पूरी बॉडी की हर प्रक्रिया को संतुलित करते हैं, हर क्रिया को संतुलित करते हैं। तो आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, उसके बिल्कुल पीछे पीनियल ग्लैंड है जिसमें नींद का हार्मोन निकलता है। तो ये जो है, आत्मा यहां पर आ जाती है, और आत्मा के अंदर 7 एनर्जी रहती हैं, 7 गुण रहते हैं, 7, जैसे ये प्रकाश का जो बल्ब है, इसमें दो एनर्जी से निकल रही है, एक तो प्रकाश निकल रहा है, दूसरा गर्मी निकल रही है। ऐसे ही आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योतिबिंदु है जिससे 7 एनर्जी कहो या गुण कहो हमेशा निकलते रहते हैं जब आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है तो, और उससे यह शरीर चलता है। आत्मा जब तक यहां बैठी है तब तक सब कुछ चलता है, और आत्मा जब निकल जाती है तो क्या होता है, कुछ भी चलता नहीं। इसी को देख करके कवि ने कहा था कि एक कविता लिखी है, जो कविता आप बचपन में पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एक सितारा है जो सब कुछ चला रहा है किंतु दिखाई नहीं देता है, कैसे चला रहा है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए कितना वंडरफुल वो स्टार है। बाबा की मुरली में भी आता है कि क्या आता है, भृगु के बीच चमकता है अजब सितारा, वो यही गाने की इसी कविता की हिंदी है, भृगु के बीच चमकता है अजब सितारा, इसी की हिंदी में बाबा मतलब वो गीत गाते हैं इसी की हिंदी में। तो ये जो है सितारा यहां बैठ के सब कुछ चला रहा है, कैसे चला रहा है, 7 गुणों के माध्यम, 7 एनर्जी के माध्यम से, शरीर की हर कोशिका को इसकी आवश्यकता है। तो मैं आपको मन के बारे में बता रहा था, तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, मन है सोचने की शक्ति, और संस्कार, जो चीज हम बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। चलो इसकी हम थोड़ा गहराई, मन में हम जा रहे थे, तो मन जो है जो भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके आधार पर स्मृति बनती है, स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति के अनुसार समर्थी आती, जैसी स्थिति होती है वैसी समर्थि आती है। फिर स्मृति से हमारी वृत्ति बनती है, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसा हमारा वृत्ति बन जाती है, वृत्ति माना हमारा एटीट्यूड बन जाता है। अगर मेरी स्मृति है कि ये कार्य मैं कर सकता हूं, मैंने ये कार्य कई बार किया है, तो मेरी वृत्ति कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाती है। और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। स्मृति में ना जो चीज हमने स्मृति में हमें रिकॉर्ड हो गई और वो क्रम हम बार बार करते हैं, उस स्मृति को बार बार इमर्ज करते हैं, तो एक वृत्त सर्कल साइकिल बन जाती है। उस व्रत को बार बार, उस स्मृति को व्रत के रूप में जब यूज करते हैं तो वो वृत्ति व्रत के रूप में हमारी अंदर बार बार घूमता है, उससे हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा लट्टू, एक लाइट वाला लट्टू घुमाते हैं ना जैसे, तो जितना वो घूमता है उसके अंदर लाइट ज्यादा बढ़ती जाती है, लाइट बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से जो चीज जिस स्मृति को हम बार बार जागृत करते जाते हैं, वो हमारी वृत्ति आसपास लाइट फैलती जाती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगर हमारी नेगेटिव वृत्ति है तो वातावरण नेगेटिव, वायुमंडल नेगेटिव हो जाता है। अगर हमारी वृत्ति पॉजिटिव है तो आसपास वायुमंडल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहां पर, यहां आके जो व्यक्ति आते, जैसे दादी जी आते हैं, तो सारा वायुमंडल कैसा हो जाता है, रूहानियत वाला हो जाता है। बाबा आते हैं तो कैसा होता है हॉल सारा, सब आत्माएं बहुत एक्सट्रीम साइलेंस की अनुभूति करते हैं और एकदम कैसा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वो बाबा साइलेंस का सागर है, शांति का सागर है। तो जैसी आत्मा होगी उसकी जैसी वृत्ति होती है उसके अनुसार वायुमंडल बनता है। वायुमंडल एक स्थान पर होता है, वाइब्रेशंस जो होते हैं, जो हमारी जो भावना, फिर वृत्ति से भावनाएं बनती हैं, भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। वाइब्रेशन कहां तक होते हैं, वाइब्रेशन दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं। जैसे एक एक बच्चा है और एक मां है, अगर बच्चा अमेरिका में बैठा है और मां यहां पर है, आबू में है या दिल्ली में है, तो बच्चा कहता है मां मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, तो बच्चे को मां के और मां को बच्चे के वाइब्रेशंस कैच होने लगते हैं, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर, 20000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। और फिर जैसी भावना होती है वैसे विचार चलते हैं, अर्थात संकल्प चलते हैं। तो संकल्प कहां तक जाते हैं, संकल्प ये कहा जाता है, साइंस के अनुसार ये माना भी जाता है, संकल्प पूरे यूनिवर्स तक जाते हैं। हमारे विचारों का असर सब मनुष्यों पर पड़ता है, सब प्राणियों पर पड़ता है, और इवन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, और सूर्य चांद तारों पर भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। जैसे आज से लगभग 17 साल पहले यहां पर शांतिवन में कुछ खास नहीं था, है ना, डायमंड हॉल भी अप्रैल 96 में बनना शुरू हुआ, शांतिवन का निर्माण तब शुरू हुआ, और फिर उसके बाद ये सब देखिए कितना बड़ा रचना हुई। किससे बनी, दादी जी को संकल्प आया, नक्शे बने और क्या बन गया, आज शांतिवन स्वर्ग के समान बन गया। किससे पैदा हुआ, संकल्प से पैदा हुआ ना। हम बच्चे बने कैसे, बने ब्राह्मण कैसे बने, ब्रह्मा बाबा के संकल्प से बने, है ना, दादियों के संकल्प से हम पैदा हुए। तो ये जो है संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। शिव बाबा कैसे रचना कर रहे हैं संसार की, नए स्वर की रचना कैसे कर रहे हैं, पांचों तत्वों का परिवर्तन कैसे होगा, आज की मुरली हमने सुनी, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, संकल्पों से होगा ना, हमारे संकल्प से, मनसा सेवा से होगा ना। तो ये जो है ये संकल्प हो गए। तो और बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि में भी चार चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो बल्ब है, बल्ब के सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है, बल्ब के पास। तो ऐसी आत्मा जो बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसके आसपास से 7 लाइट सबसे ज्यादा है। तो ये 7 लाइट ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, तो ज्ञान का बेसिकली अगर सार रूप में अगर हम कहें ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान है एबीसीडी, चार बातों में सार रूप में कहते हैं तो एबीसीडी आता है। ए माना आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, या महसूस करें मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बी माना बाबा, अर्थात मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान जो कि परमधाम में रहते हैं, सब सर्व आत्माओं के पिता परम पिता हैं। सी माना कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, मुख्य नौ संबंध है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन और सर्जन, और नौवां एक और भी है जिसे हम बच्चा कहते हैं। हम बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, फिर बाबा हमको अपना वारिस बनाते हैं। तो एक एक संबंध की अनुभूति उनसे हम करें, एक एक संबंध की अनुभूति में आधा घंटा, एक संबंध की अनुभूति में आधा घंटा रह सकते हैं कम से कम, उसमें खोए रह सकते हैं। इस संबंध की अनुभूति में रहना ही योग है, इस गहरी याद में खो जाना। और डी फॉर ड्रामा, अर्थात संसार एक नाटक है, संसार एक ड्रामा है, ड्रामा एक इस नाटक में सब आत्मा एक्टर्स हैं और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेटली डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अर्थात इसका मतलब यह भी हुआ कि जो भी हम आपस में इस समय जिसे हम संबंध कहते हैं, पति पत्नी माता पिता भाई बहन बच्चे दोस्त, वो हम सब आपस में कौन है, पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए साथ आए हुए हैं। हमारा वहां संबंध नहीं है, हमारा वहां पर क्या है, फर्ज है, वो एक बंधन है, वो फर्ज हमें पूरा करना ही है, क्योंकि पिछले जन्मों को हमने सुख दिया हुआ है सुख लेना है और दुख दिया तो दुख लेना है, क्योंकि 63 जन्म में विकारों के वशों के कर्म किए तो वो दुख का रूप ज्यादा है सुख का रूप कम है। किसी को हमने दुख दिया हुआ है तो मेरा दोस्त बन के मुझे धोखा देगा, या बच्चा बन के या बच्ची बन के या पति बन के या पत्नी बन के या माता पिता बन के भाई बहन बन के दुख देंगे, और सुख दिया सुख मिलेगा। और तो हमारा फर्ज यहां है, बंधन यहां है, संबंध उससे है, संबंध अनकंडीशनल होता है और बंधन कंडीशनल होता है। संबंध में आप एक टाइम ना भी निभाओ कोई बात नहीं, किंतु बंधन निभाना पड़ता है। आप अपने घर में 20 साल से 30 40 साल से पालना करते हो बच्चों की या किसी की भी, और एक दिन नहीं करो तो क्या होता है, आप बैंक की इंस्टॉलमेंट हर महीने देते हो, एक महीना नहीं दो तो क्या होता है, तुरंत नोटिस आ जाता है ना। तो ऐसा हमारा हिसाब किताब है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो एबीसीडी है, ये ज्ञान का सार है, इससे पवित्रता आती है। बाबा क्या करता है, बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है फिर पतित पावन है, अर्थात इसमें क्या होता है, अब हम इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। मन की जहां मैं बात कर रहा था, मन के भी तीन पार्ट हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, आम आदमी का कॉन्शियस माइंड सिर्फ इस समय 8% है। कॉन्शियस माइंड माना जो मेरे वश में है, जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं सोच रहा हूं, जो मेरे स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प मेरे प्रेजेंट में है रिकॉर्डेड, मेरे कंट्रोल में है, जिनका मुझे पता है, जागृत मन भी कहते हैं इसको, चेतन मन भी कहते हैं। फिर है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को चित्त भी कहते हैं हिंदी में। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है इस जन्म का, इस जन्म का जो चीजें मैं सोचा तो सही मैंने करूंगा किंतु कर नहीं पाया, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाई, वो फाइलें कहां चलेगी, सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। और पिछले जन्मों में जो भी मैंने किया, पिछले 63 जन्म में विकारों के वश जो किए कर्म किए हैं, वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड की हमारी बुद्धि पर परछाया है, परछाया समझते है, वो आत्मा के अंदर ही किंतु बुद्धि के ऊपर उसकी परछाया रहती है। परछाया माना बुद्धि इससे प्रभावित रहती है, पिछले जन्मों के उन कर्मों के अनुसार, मतलब अनकॉन्शियस माइंड के अनुसार ही हमें ये जन्म मिलता है। माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, गरीबी अमीरी जो भी मिलता है पिछले जन्मों का अनकॉन्शियस माइंड के अनुसार ही मिला है। संबंध जो भी मिले हैं, जो भी चीजें मिली हैं, सभी इसी के अनुसार मिला। तो बुद्धि के भी चार पार्ट हैं। बुद्धि में पहली जो बात है वो दिल है, मैंने बताया ना एकदम बल्ब के आसपास सबसे ज्यादा लाइट है। तो ये दिल तो फिजिकल दिल है, इस दिल में कोई रह सकता है क्या? इस दिल में कोई रह नहीं सकता है। रह सकता है कोई? इसमें चार चैंबर है, कोई इसके अंदर रहे तो क्या होगा? और एक एक मिनट में 70 बार ऐसे ऐसे करता है ना, तो उसको 70 बार बाहर निकलना पड़ेगा, 70 बार अंदर आना पड़ेगा ना? और खून ही खून है और कुछ भी नहीं है दिल में। तो इस दिल में कोई रह सकता? कोई भी नहीं रह सकता। ये मंदिर नहीं है, ये तो एक पंप है। इस दिल का इस दिल से बहुत कनेक्शन है। आत्मा का दिल है जिसमें 7 गुण भरे हुए हैं। इस दिल को हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं और कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, बाबा की गोदी भी कहते हैं, बाबा की पलके भी कहते हैं, बाबा का दिल तख्त भी कहते हैं। तो ये 7 गुण जो यहां भरपूर है उसको दिल कहते हैं। इसलिए एक एक जो अपराधी होता है वो भी कहता है कि मेरा दिल मानता नहीं है, ये दिल नहीं मानता है कि मैं ऐसा काम करूं। डॉक्टर पंचम सिंह की बात सुनी होगी ना आपने, अभी तो बाबा के बच्चे बन गए तो बताते हैं उनके भी कुछ नियम थे, है ना, उनका दिल नहीं मानता था कि ऐसे काम वो करें। तो वो दिल अंदर की जो समझ, ज्ञान माना समझ, वो समझ अंदर रहती है कि मैं कौन हूं, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, इसको ऐसे हर्ट नहीं करूं, भले पैसे ले लूं किंतु इसको हर्ट नहीं करूं, है ना। इतनी पवित्रता रहती है, इतनी शांति थोड़ी रहती, भले आज थोड़ी है पर है, थोड़ी शांति है, रूहानी प्यार है, थोड़ी सी इतने देर सुख की अनुभूति भी है, आनंद भी है। जब अंदर जाते हैं तो दिल के अंदर जाते हैं ना, कहते हैं तो हां अंदर शांति मिली, प्यार मिला, मन बहुत बेचैन था, अंदर गए तो शांति मिल गई, थोड़ी सी प्यार मिल गया, खुशी मिल गई, आनंद मिल, शक्ति आ गई। तो ये दिल में अंदर जाना होता है, यही दिल एक मंदिर है, दिल ही तो है, दिल है कि मानता नहीं, यही दिल है। इस दिल में कोई समा जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है बाबा के अलावा। इस दिल जितने 7 गुण अंदर भरे हुए हैं तो उसके बाहर जो उससे निर्णय शक्ति, उससे हमारा परखने की शक्ति बनती है जिसको विवेक कहते हैं, विजडम, इंग्लिश में कहते हैं विजडम, विवेक। और विवेक के आधार पर फिर आगे उसके बाहर निर्णय शक्ति होती है जिसको बुद्धि प्रॉपर कहते हैं, और उसके बाहर है सबकॉन्शियस माइंड या चित्त। तो बुद्धि के ये 4 पार्ट हैं, दिल, विवेक, बुद्धि और चित्त, और उसके बाहर मन है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि दोनों मिलाकर के। और संस्कार क्या है? जो चीज हम बार बार कर रहे हैं वो क्या बन रहा है हमारा? वो स्मृति के रूप में मन का ही पार्ट है स्मृति, तो वो हमारा संस्कार। जो चीज हम बार बार करते हैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथों से कर्म, पैरों से कर्म करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होकर संस्कार बनता जा रहा है, वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करता रहता है। तो इस तरह से ये हमारा मन बुद्धि संस्कार ही है हमारा, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसके बाहर स्थूल शरीर है जिसमें 8 अंग हैं, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, और फिर हमारे 8 अंग हैं, ब्रेन है हमारा, हमारा इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने का सिस्टम है, लंग्स हैं सांस लेने के लिए, हार्ट है खून पंप करने के लिए, लीवर और आंते हैं खाना पचाने के लिए, और हमारे हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये जो है हमारे हार्मोन्स की ग्लैंड्स हैं, जिससे हमारी बॉडी में हार्मनी मतलब सामंजस्य स्थापन होता है, संतुलन होता है। फिर हमारी बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अर्थात आठ ये जो हड्डियां 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, ज्वाइंट्स हैं जोड़ हैं, और मसल्स हैं मांस है। और आखिरी जो सिस्टम आठवां है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितना भी टॉक्सिन्स कोशिकाओं में बनते हैं वो कोशिकाओं से टॉक्सिन इकट्ठे खून के द्वारा किडनी में आते हैं और किडनी उसको एक घंटे में साफ, पूरा खून एक घंटे में साफ कर देती है। तो एक घंटे में सारे खून की सफाई होती है, 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है, और हमारी पसीने की ग्रंथियां भी पसीने से गंदगी बाहर निकालती रहती। तो ये आठ सिस्टम, ये हमारा स्थूल शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आपस में कैसे गुंधे हुए हैं आपस में? जैसे कि आप एक सूखी ब्रेड ले लो और एक प्लेट में दूध ले लो, तो क्या होता है? प्लेट में दूध है और ब्रेड एक रखी, तो क्या हो जाएगा? अब दूध की शेप क्या हो जाएगी? सारा दूध कहां चला जाएगा? ब्रेड के अंदर, है ना? तो दूध की शेप क्या हो गई? जैसी ब्रेड की शेप है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की शेप क्या है? जो इस शरीर की शेप है। सूक्ष्म शरीर में भी दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, लीवर है, आंतें, सब कुछ ऐसा कैसा है, किंतु वो किस चीज का बना हुआ? लाइट का बना हुआ है, सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर समझ में आया? क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है फरिश्ता को समझने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए। और हमें इस शरीर में रहते ही फरिश्ता बनना है, ये शरीर छोड़ने के बाद बनना है। आप क्या समझते हैं भाई, क्या समझते हैं? शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है कि अभी बनना है? बहनें क्या समझ रही हैं? शरीर छोड़ने के बाद शरीर में रहते हुए फरिश्ता बनना है ना, है ना? सच्चा ब्राह्मण भी, सच्चा ब्राह्मण तो हम भी बने हुए हैं, और इसमें आज थोड़ा सा परिभाषा मैं भी लेता हूं उसकी। तो अब मनुष्य जो है सत्युग में क्या है कि आत्मा सत्व प्रधान है, अर्थात दिल सातों गुणों से भरा हुआ है। सतो प्रधान शब्द है, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर है, दिल में सातों गुण भरे हुए हैं, इसलिए विवेक हमारा ईश्वरीय है, वहां पर गॉडली है हमारा विवेक, विजडम, और बुद्धि हमारी डिवाइन है, दिव्य है, दिव्य बुद्धि है। ये जो सात गुण जो है ना, ये हमारे प्राइमरी गुण है, प्राइमरी एनर्जी है, जिनसे बहुत सारे दैवी गुण बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, नीला, लाल और पीला, इनसे लगभग 150 सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं, दूसरे रंग बन सकते हैं। जैसे पिंक बन गया, लाल और पीला मिला दो तो, हरा और पीला मिलाओ तो, सॉरी नीला और पीला मिलाओ तो हरा बन जाएगा, लाल और पीला मिलाओ तो क्या बन जाएगा? लाल पीला और तीनों मिला दो तो ब्राउन बन जाएगा, है ना? ऐसे ही आत्मा के अंदर सात गुण, अगर दिल में सात गुण भरपूर हैं, तो ये जो सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे दैवी गुण, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी, जो दैवी गुण हैं वो इन सात गुणों के मिश्रण से बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिश्रण से बनते हैं, ठीक है? तो जब आत्मा सात गुणों से भरपूर है, अर्थात दिल सात गुणों से भरपूर है, तो बुद्धि में, बुद्धि सत्यता इन दैवी गुणों के ऊपर आधारित होती है, सत्यता के ऊपर आधारित, पवित्रता के ऊपर आधारित। तो दिव्य बुद्धि की यह परिभाषा है, जो बुद्धि सत्यता के ऊपर आधारित हो, सत्यता माना अपने अनादि और आदि स्वरूप के ऊपर आधारित हो, पावन सत्व प्रधान स्थिति के ऊपर आधारित हो, निर्भयता के ऊपर आधारित हो, सरलता, नम्रता, उदारता के ऊपर आधारित हो, मधुरता के ऊपर आधारित हो, तो उसे कहते हैं दिव्य बुद्धि। तो जब आत्मा सात गुणों से, दिल सात गुणों से भरपूर है, तो विवेक हमारा ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य है, और चित्त क्या है? चित्त हमारा शांत और एकाग्र है, अर्थात तब हमारा चित्त में जो दिल में है वो चित्त में है, इसलिए कहा गया सत्यचित आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप। अगर दिल में सत्य है, सात गुण भरे हुए हैं, मैं आत्मा हूं, परम एबीसीडी दिल में भरा हुआ है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध परमात्मा के साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो अगर ये दिल में है, अर्थात आत्मा में इस दिल में भरा हुआ है, ये अनदनाद, इसको कहते हैं अनलिमिटेड साउंड, जपा जाप के रूप तरह चलता रहता है यहां पर दिल में, तो इससे हमारी विवेक ईश्वरीय होता जाता है और बुद्धि दिव्य होती जाती, और हर डिसीजन दिल को लगा, कोई बात देखी दिल को लगी, विवेक ने परखा, बुद्धि ने निर्णय किया, और वो कहां गया, सीधा मेमोरी में चला गया, स्मृति में चला गया। तो चित्त में क्या गया, जो दिल में ज्ञान है, पवित्रता है, शांति प्रेम सुख आनंद चित्त में है। तो चित्त और दिल बराबर हो जाते हैं, इसलिए कहा गया सच्चित आनंद स्वरूप। इसलिए परमात्मा की सिर्फ महिमा है सच्चित आनंद स्वरूप, क्योंकि वो सदा, उसके दिल सदा सत्य है और चित्त में सदा आनंद ही आनंद है। मनुष्यों का हमारा जो है दिल सत्युग त्रेता में आनंद स्वरूप है, किंतु बाद में जाके चंचल और अशांत है। तो इस तरह से हमारा दिल उस समय वो है, और स्मृतियां एकदम पावरफुल पॉजिटिव होती हैं। स्मृति में एबीसीडी ही रहता है, और वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती है, भावना शुभ भावना, शुभ कामना, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी, और हमारे शरीर के अंग अंग में सातों गुण भरे रहते हैं, इसलिए हमारी कंचन काया होती है। किंतु जैसे ही हम आत्माएं नीचे की तरफ आती हैं, द्वापर में आके आत्मा की एनर्जी आधी रह जाती है, सात गुण आधे से कम हो जाते हैं, और आत्मा के सात गुण आधे से कम होने पर, जैसे किसी कंपनी में मैनेजर जो होता है, एमडी होता है ना, किसका होता है, जिसके शेयर 51% से ज्यादा होते हैं। तो जब तक आत्मा की एनर्जी 50% से ज्यादा है, तब तक आत्मा एमडी है, मतलब आत्मा मालिक है, स्वमाने आत्मा स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। और जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% होती है, सात गुण 50% से कम होते हैं, तो नेक्स्ट मालिक कौन है, मन मालिक बन जाता है, मन एमडी बन जाता है, आत्मा अभी एमडी नहीं रहती है। मन का कनेक्शन किससे रहता है, पांच कर्मेंद्रियों से रहता है, और पांच कर्मेंद्र कनेक्शन किससे रहता है, दुनिया के पांच तत्वों से रहता है, प्रकृति के पांच तत्वों से रहता है। अब वो बाहर के सीन देखने लगती है, बाहर की बातें सुनने लगती है, बाहर के टेस्ट लेने लगती है, उससे प्रभावित होने लगती है, और बाहर की चीजें सूंघती है, बाहर की चीजों को टच करती है। तो उसके असर में आने से आत्मा में पहला विकार काम विकार आता है, पहले देहभान आता है, फिर काम विकार आता है, फिर धीरे धीरे क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, जिसके प्रति कनेक्शन हुआ उससे फिर लोभ, उसके लिए इकट्ठा करने की इच्छा पैदा होती है, बच्चे होते हैं, और उससे फिर मोह आता है, और फिर अहंकार पैदा होता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं उसका अहंकार अभिमान पैदा होता है, फिर उनके बहुत बहुत सारे बाल बच्चे आगे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे से हमारी अब दिल में क्या हो गया, दिल में अभी एनर्जी कम होने लगती है, जब इन विकारों के कारण अब दिल में वो देहधारी आ जाता है, पहले तो अपनी देह आती है दिल में, देह आने के बाद फिर देह के संबंध, जिससे संबंध बनाते हैं, जिससे विकार में जाते हैं, वो हमारे दिल में आ जाता है, फिर बच्चे दिल में आ जाते हैं, और संबंधी दिल में आ जाते हैं, कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इस तरह से फिर देह के पदार्थ, जो चीजें हम इकट्ठी करते हैं लोभ से, वो अंदर दिल में आ जाते हैं। फिर देह का स्वभाव, देह के पांच स्वभाव हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के 10 संस्कार हैं, आदतें हैं। सबसे पहला संस्कार है आलस्य, दूसरा संस्कार है अलबेलापन, अपने को देह समझते नहीं, शाम को कर लेंगे, छोड़ो आज देर रात को देर सोए तो सुबह आधा घंटा और सो लेते हैं, अमृत वेला 4:30 से 5 कर लेंगे, चलो आज मुरली इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, घर में ही पढ़ लेते हैं, मुरली सुनने नहीं जाते, अलबेलापन। देह का संस्कार ही दूसरों में दोष निकालना है, देह का संस्कार ही बदला लेने की भावना रखना है, देह का संस्कार ही शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, और प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मुझे ये भी करना है, जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, और कंपैरिजन कंपटीशन करना, और ईर्ष्या करना, ये देह की आदत है। तो चार बातें हमारे दिल में आ जाती, कौन कौन सी? देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ। इससे हमारी जो विवेक है ना वो कंफ्यूज होने लगता है, क्या करूं क्या ना करूं। जो दिल में है उसके वो गलत कर रहा है तो भी निर्णय नहीं कर सकते हैं ये गलत कर रहा है, वो गलत उसका लगता ही नहीं है। जिसके प्रति मोह होता है उसका अपने बच्चे का गलत लगता है क्या? गलत करता है तो भी गलत नहीं लगता है, दूसरे का थोड़ा गलती भी ज्यादा गलती दिखाई देती है ना, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो विवेक कंफ्यूज हो जाता है और बुद्धि आसुरी हो जाती है और चित्त अभी बड़ा होता जाता है। चित्त में बहुत सारी फाइल्स, क्योंकि सेव हम डिसाइड ही नहीं कर पाते इसलिए चित्त बड़ा होता जाता है, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है। इस तरह से हमारी मेमोरीज और कॉन्शियस माइंड छोटा होता जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड से सपने आते हैं। जैसे हम सोने जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है किंतु सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, सपने शुरू हो जाते हैं, उससे हमें नींद गहरी नहीं आती है। तो हम सारा दिन थके थके रहते हैं, सुबह उठ के भी फ्रेश नहीं होते, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह सुबह नींद आने लगेगी, 4 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी, 5 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे अंदर क्या होता है, ये हमारी स्थिति होने लगती है। उससे हमारी स्मृति, जो प्रेजेंट स्मृति, प्रेजेंट की स्मृतियां भी सॉलिड बेस नहीं होती हैं, वृत्ति हमारी लगाव झुकाव टकराव वाली हो जाती है। किसी के प्रति लगाव जो हमारा फायदा करता है, मेरी बड़ाई करता है, झुकाव प्रभाव या टकराव, भावना जो लगाव है उसके प्रति शुभ भावना, जिससे टकराव है उसके प्रति दुर्भावना, संकल्प भी ऐसे ही, जो जिनसे लगाव है झुकाव है उनके लिए अच्छे से अच्छे संकल्प और जिनके लिए टकराव है उनके लिए बुरे से बुरे संकल्प, है ना, नहीं ऐसा। तो इस तरह का हमारा मन कॉन्शियस माइंड हो जाता है। ऐसे आत्मा जन्म लेती जाती, वो पुराने संस्कार लेकर के, मन बुद्धि संस्कार लेकर के अगले जन्म में जाती, वो अनकॉन्शियस माइंड के रूप में दिमाग में स्टोर हो जाते, फिर इस मन में, इस जन्म में करती करती जो करती वो सबकॉन्शियस माइंड बनता, फिर इकट्ठे करके ले जाती, फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाता। मतलब कॉन्शियस माइंड हमारा चालू खाता है और सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का ही फिक्स डिपॉजिट है और अनकॉन्शियस माइंड पिछले जन्मों का अकाउंट है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब फरिश्ता, मनुष्य है मन के वश में, अर्थात स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प के वश में है, और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के वश में है। 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किए उनके वश में, उसे कहते हैं मनुष्य। जब शिव बाबा आता है तो हमको पहले मनुष्य से क्या बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का क्या अर्थ है? ब्राह्मण माना ब्राह्मण, जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, बड़ा, विशाल, मां माना मां, सबकी मां, सबसे बड़ी से बड़ी मां, इजंट इट, ठीक बात है, बड़ी मां है ना। तो हम ब्राह्मण कौन है? ब्रा माना बड़ा, बेहद, जिसका मन और बुद्धि विशाल हो, जिसकी मन और बुद्धि बेहद की हो, वो है सच्चा ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण कौन है? मनुष्य की बुद्धि हद की है, मन भी हद का है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे मां बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरा घर है और ये मेरी, बस ये मेरा है, बाकी सब पराया है, इनका भला करना है, इनकी बाकी से मुझे मतलब नहीं है। ये है मनुष्य, सब कुछ हद में है, और ब्राह्मण सब कुछ बेहद में है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, मैं आत्मा हूं, ये बेहद है, सब आत्माएं हैं, ये बेहद है, मैं परमात्मा के संतान हूं, ये बेहद है, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, बेहद है, वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, बेहद, सारे विश्व को बदलना है, ये बेहद है। ये है सच्चा ब्राह्मण, ब्राह्मण की परिभाषा। तो अगर हम ब्राह्मण की परिभाषा को याद रखें कि मुझे किसी भी हद में नहीं रहना है, मेरी बुद्धि बेहद की हो, मेरी दिल में बेहद का मेरा दिल हो, मेरी विवेक विजडम पूरे विश्व के बारे सोचे, सारे विश्व की मनसा सेवा करनी है, मेरी बुद्धि देवी इतने दैवी गुणों से भरपूर हो कि सारे विश्व को दे सकूं, चित्त मेरा आनंद स्वरूप हो, मेरी स्मृति में क्या हो, स्मृति मेरी बेहद की हो, सदा परमधाम में टिकी रहे, वृत्ति मेरी सबके प्रति आत्मिक हो, भावना मेरी सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, संकल्प मेरा 100% क्या हो, शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी। चार बातें, शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी, तो ये मेरे संकल्प हो, ये है सच्चे ब्राह्मण की निशानी, सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा। अब ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है। अच्छा, ब्राह्मण से हमें क्या बनना है, बेसिकली हमको बीज रूप स्थिति में जाना है, विदेही अवस्था में जाना है, अशरीरी स्थिति में जाना है। इसके बीच में ब्राह्मण और देवता बनने के बीच में, मतलब पहले परमधाम में बीज रूप में जाएंगे, उसके बाद देवता बनेंगे, इसके बीच में जो हमें बनना है, इसके बीच में जो प्रोसेस है वो फरिश्ता है। और वो फरिश्ता बनने के लिए हमें चार नियम और चार मर्यादाओं पे पक्का चलना पड़ता है। बल्कि सच्चा ब्राह्मण वो जो चार नियम, जो बाबा ने हमें चार नियम दिए हैं, एक्चुअली क्या है, हम जब आए हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, रजो माना बैटरी 50% से कम, मतलब 7 गुण 50 से कम, और सत्तमो माना 7 गुण 7 एनर्जी लगभग ना के बराबर, 3-4%। अब आत्मा के पास सिर्फ इतने गुण हैं कि वो शरीर को मुश्किल से चला सकती है, मन बुद्धि संस्कार की पालना नहीं करती है वो एनर्जी। जब सतो प्रधान थी तो मन बुद्धि संस्कार की पालना भी करती थी और शरीर की पालना भी करती थी, अब सिर्फ शरीर की पालना कर सकती है, वो भी बॉर्डर पे, जरा सा कम हो जाए, शांति कम हो जाए, सिर दर्द हो जाएगा, थोड़ा प्रेम कम हो गया, छाती में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ईगो आ जाए, सिर में दर्द, शांति कम हो जाएगी, सांस ऊपर नीचे होने लगेगा, थोड़ी खुशी कम होगी, हाजमा खराब हो जाएगा, है ना, थोड़ा आनंद कम हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, है ना, उदासी आएगी, डायबिटीज बढ़ जाएगी, थायराइड की बीमारी हो जाएगी, थोड़ी शक्ति कमी हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना, तो एकदम बॉर्डर पे है सब कुछ। तो अभी जो है हमको क्या करने का है कि अभी हमको परमात्मा की याद से इतनी शक्ति अपने अंदर भरनी है, तो मतलब इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, जिसे हम याद कहते हैं। हमारे चार सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान माना समझ, ये समझ ABCD की समझ, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे संबंध किसके साथ हैं, इनके साथ फर्ज हैं, सबके साथ फर्ज हैं, उससे शक्ति लेकर के ही मैं ये अपने फर्ज अच्छे से निभा सकता हूं, ये निभा सकती हूं। और D4 drama, साक्षी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो साथी, ABC माना साथी रहना, बाप का सदा साथी रहना, और D माना साक्षी रहना। तो साथी और साथी है तो साक्षी है ड्रामा से, अगर साथी नहीं तो साक्षी भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब ये बैटरी चार्ज हो, इसके लिए चार नियम कौन से हैं, सबसे पहला है अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। अमृत वेला किसका पावरफुल होगा, जो सोने के पहले रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाए, और सोने के पहले लेटर लिख के अपने बाबा को सब कुछ बता दे, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ बीता, अपने दिल का सच्चा सच्चा हाल सब कुछ बाबा को दे दे। जब ऐसे जैसे क्रिश्चियन लोग कन्फेशन करते हैं ना, कन्फेशन, तो हम जो भी गलत काम करते हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसीज दिमाग की बढ़ती जाती है, 15, 20, 25, 30, 40 होती जाती है। और गहरी नींद को कहते हैं, गहरी नींद माना चार से कम फ्रीक्वेंसी होगी ना हमारी, चार विचार से कम होगी तो ही हमें गहरी नींद आएगी, डेल्टा स्लीप आएगी, और डेल्टा स्लीप आएगी तो हम सुबह फ्रेश उठ सकते हैं। अब मैं सोने से पहले अगर मेरे बहुत विचार चल रहे हैं, 30-35 विचार चल रहे हैं, तो मैं सोने जाऊं तो मुझे नींद क्या होगा, 10 बजे मैं सोने जाऊं तो क्या होगा, 11 बजे तक तो मेरे विचार 20 होंगे और 12 बजे तक 10 होंगे, 1 बजे जाके मुझे विचार 4 होंगे, मतलब नींद आएगी, गहरी नींद। 1 बजे नींद आएगी तो सुबह 7 बजे अच्छी नींद खुलेगी ना, नींद वापस। इसलिए नींद हमें फ्रेश नहीं होते सुबह सुबह। तो सोने के पहले जरूर है कि हम बाबा को एक लेटर लिखें, क्योंकि बाबा को हम बोल के नहीं बता सकते, लिखने से भावना हमारी आती है, तो हम बाबा को, बाबा सुबह ये हुआ, मेरा अमृत वेला ऐसा हुआ बाबा, फिर मैं स्नान कर रहा था तो मेरे मन में विचार आया, फिर बाबा मुरली सुनने आया, मुरली में सुनने तो गया किंतु मेरे मन में वो दूसरी बात याद आ गई, फिर मैं वॉकिंग करते समय ऐसा हुआ, फिर वो भाई मिला या बहन मिली उससे मैंने ऐसी बात, उसने मेरे को बोला मैंने भी ऐसा बोल दिया। हर बात बाबा को बता दें, 5-7 मिनट लगते हैं लिखने में लेटर, ज्यादा देर नहीं लगती है, और लेटर लिख के साइन कर दें और बाबा को फिर 000 पे फैक्स कर दें। बाबा का हॉटलाइन नंबर है कौन सा? 000 है ना, आपको पता होगा शायद, हम 10 डायल करते हैं तो कहां पहुंच जाता है लेटर हमारा फोन? स्टेट के बाहर। 20 डायल करो तो कंट्री के बाहर, और 30 डायल करो तो वर्ल्ड के बाहर। नहीं तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, सब 0 हो गया। तो लेटर हमारा बाबा के पास पहुंच गया, और फिर लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, उसके बाद चार्ट भरो अपना, फिर बाबा को याद करके सो जाओ। सोना कहां है? जो हमारा बेड है ना जिसपे हम सोते हैं, ये बॉडी हमारी कार है, उसको वहां पार्क कर दो, वो गैरेज है। हमारा बेडरूम कहां है? कहां है? सूक्ष्मतन। और बेड कहां पर है? बाबा की गोद। ऐसे हमको सोना होता है। अगर हम ऐसे सोते हैं तो हम शुरू से डेल्टा स्लीप में चले जाते हैं, और टाइम दे दें बाबा को कि बाबा मुझे इतने बजे उठा देना, 10 माना बस, 10 के बाद कभी जागना नहीं चाहिए, एमरजेंसी हो तो अलग बात है, अदरवाइज 10 के बाद कभी नहीं जागना चाहिए। दादी जी कहा करती थी 10 जैसे 10 बजे हम लोग कभी दादी शाम को मिला करती थी, 10 बजे होते ना, 10 बज जाते, दादी कहती 10 माना बस, चलो अभी 1 मिनट मेडिटेशन करो, बाबा को याद करो, फिर जाके सो जाओ। तो ऐसे दादी रोज मिला करती, आज रोज शाम को दादी बैठ के मुरली सुनती थी और हम सबको बुला लेते थे, तो हम ऐसे बाबा दादी से, दादी को मतलब मुरली सुना, दादी मुरली सुनाती थी या दादी को और सुनाता था, तो ऐसे सेम करते थे। तो इस तरह से 10 बजे सो गए और बाबा को बता बाबा 3:30 उठा देना, एक्यूरेट देखो 3:30 तो नहीं, 3:29 पे आप अपने आप उठ जाओ, अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, और एकदम बस तभी से याद शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि पहला संकल्प जैसा होता है उसके ऊपर सारा दिन चलता है, जैसा पहला संकल्प वैसा ही सारा दिन चलेगा। तो पहला संकल्प भी बीज रूप होना चाहिए, बीज रूप माना मैं आत्मा परमधाम में, परमधाम की निवासी हूं, परमात्मा पिता की संतान हूं, तुरंत परमधाम में पहुंच जाओ। तो ऐसा पावरफुल संकल्प हो, वहां जाकर के वहां पर ही हम 4:45 बजे तक योग करते रहे बाबा की याद में, वहीं ज्वालामुखी स्थिति, एक ही संकल्प हो, ज्वालामुखी याद माना एक ही संकल्प, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, आनंद की स्थिति में योग करें, बाबा के लव में लीन हो जाएं। ये तभी पॉसिबल है जब रात को लेटर लिख के चार्ट भर के बाबा को याद करके सो दो, क्योंकि गहरी नींद आएगी, गहरी नींद आके एकदम फ्रेश होकर उठेंगे और तो योग लगेगा। अगर अदरवाइज आप टेलीविजन देख के सोते हैं या कुछ और देख के सोते हैं या कुछ और बात करते करते सो जाते हैं, तो कभी आपको गहरी नींद नहीं आएगी, और अमृत वेला कभी पावरफुल हो नहीं सकता, भले आप उठ के बैठ जाओ। नहीं तो लोग क्या करते हैं पता है, आपको उठने के बाद उठेंगे मुंह हाथ धो लेते हैं, फिर थोड़ी देर तो ऐसे बैठ के बैठते हैं बाबा को ABCD को रिवाइज करते हैं, और फिर थोड़ी देर में आगे, फिर अलर्ट होते हैं, फिर इस तरफ, फिर थोड़ी देर में इस तरफ, और लास्ट में यूं मुंह खोल के ऊपर। तो ये अमृत वेला नहीं होता है, ठीक है, इसे टाइम वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है ना। ये अमृत वेला नहीं, अमृत वेला माना विक्रम विनाश करना, अमृत वेले में ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, और किसी समय पर विक्रम विनाश नहीं हो सकते। तो ये अमृत वेले के समय विक्रम विनाश हो सकते हैं, उसके लिए हमें ऐसी याद होनी चाहिए। एक्चुअली अमृत वेला इनाम है सारे दिन की दिनचर्या का, जो कल मेरी दिनचर्या रही या जैसे आज की दिनचर्या मैं जैसी बिताऊंगा उसका इनाम मुझे अमृत वेला मिलेगा। जो रात को मैंने लिख के बात बाबा को दी, बाबा मेरे अंदर से मुझसे आज ये कमजोरी हो गई, मुझे आज ये बात मैंने गलत कर दी, तो बाबा अगले दिन क्या करेगा, उतनी शक्ति अंदर डाल देगा ताकि वो गलती दोबारा ना हो आज। और सुबह सुबह जब हम अमृत वेला योग करते हैं, हम जैसे जैसे अमृत वेला योग करना शुरू करते हैं ABCD को रिवाइज करना शुरू करते हैं, रिवाइज है ना, मनन करते हैं, मतलब रिवाइज करना माना मनन करना शुरू करते हैं, और उसमें टिकते जाते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे संबंध उसके साथ, एक ही संबंध की अनुभूति करते हैं, डिफॉल्ट ड्रामा। जैसे जैसे हम करते हैं हमारा मन पवित्र होता जाता है, सबकॉन्शियस माइंड खत्म होता जाता है, विचार 15 से 8 हो जाते हैं, शांति अनुभव होने लगती है। शांति माना पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव विचार कम होते हैं, नेगेटिव विचार फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। और जैसे विचार 6 पहुंचते हैं तो हमें रूहानी प्यार की अनुभूति होने लगती है, और जब सिर्फ खाली ABCD रह जाता है तो हमें ऐसा फील होता है देखे देसे नहीं आ रहे, इस संसार 5 तत्वों से परे चले गए। वो खाली जब ABC रह जाता है तो हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। ABC में क्या है, आत्मा बाबा कनेक्शन, बस। डी तो इस ड्रामा इस संसार में है ना, ड्रामा तो इस संसार में है, ड्रामा सूक्ष्म वतन तो है नहीं, तो हम कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन। अर्थात सिर्फ शुद्ध मन हमारा बन जाता है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ रह जाता है जो कि शुद्ध होता है। कॉन्शियस माइंड से हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, और खाली जब ए भी रह गया, मैं बाबा का बाबा मेरा, अर्थात तो आनंद की स्थिति आ जाती है। और उस आनंद की स्थिति में बाबा को हम अपने मन की बातें शेयर करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो हमारी ये सारे संकल्प भी ये भी खत्म हो जाता है कि बस बाबा के लव में लीन हो जाता है। सिर्फ एक ही संकल्प रहता है, बाबा मेरा बाबा। और उस बाबा के शब्द में लीन होने से होते ही हम क्या महसूस करते हैं, हमारी सर्वशक्तिमान की स्थिति आ जाती है, मास्टर सर्वशक्तिमान, अर्थात हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। और परम धाम में जाने से क्या होता है कि हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं, जितने भी विकारों की मेमोरीज, हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज 30 की 35 की 40 की होती हैं, वो डिलीट होने लगती हैं। काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, आलस की, अलबेलेपन की, चिंता भय की, शक अनुमान की, ईर्ष्या की, जल्दीबाजी की, प्रेशर्स की, वो मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। पर हमने कितने सारी बार किया हुआ है, हमने अगर 1,00,000 बार कोई क्रोध किया है तो 1,00,000 बार हमको मिटाना पड़ता है। कही कहते हैं मैं तो बहुत योग किया मेरा मिट गया, नहीं, हर फाइल पहले खुलती है फिर डिलीट होती है। SMS भी जैसे मोबाइल में SMS होते हैं ना, पहले खोलते हैं फिर डिलीट करते हैं, सारे इकट्ठे डिलीट नहीं होते हैं, तो डिलीट होते जाते हैं, जन्म बाई जन्म डिलीट होते हैं। रिटर्न जर्नी है ना, रिटर्न जर्नी माना हमारी, रिटर्न जर्नी माना पहले 83वां जन्म, 83 जन्म का बुढ़ापा, जवानी, बचपन, फिर 82 का बुढ़ापा, जवानी, बचपन, उल्टी जर्नी है ना। तो बुढ़ापा और बचपन इसमें तो अच्छा योग लगता है, जवानी में ज्यादा गलत कर्म होते, इसलिए वहां योग लगाते लगाते भी लगता नहीं है। इसलिए देखा होगा स्थिति एक रस नहीं रहती है, स्थिति कभी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती है किंतु फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं। जैसे आप माउंट आबू जाते हैं तो कभी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, कभी नीचे की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे की तरफ जाते हैं, किंतु आप कहां जा रहे हैं, जमीन से तो ऊपर आ गए ना, और जाते जाते ऐसे जाते जाते हम कहां पहुंच जाते हैं, माउंट आबू पहुंच जाते हैं। सेम वे हमारी ब्राह्मण जर्नी है, रिटर्न जर्नी है, जो एक रस नहीं होती कभी भी, ठीक है। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने जो 4 नियम 4 मर्यादा पक्का रहना चाहिए। तो निशानी का विक्रम विनाश होने की, कि जो जिस व्यक्ति से कल मैं मिला था और मुझे क्रोध आया था, या उसको देख के कोई बात मन में संकल्प आया था, खराब संकल्प आया था, आज वो संकल्प नहीं आएगा, आज वो व्यक्ति सामने आएगा आपको याद ही नहीं आएगा वो बात, आप बहुत प्यार से उससे मिलेंगे, रूहानियत से उससे मिलेंगे, तो मतलब वो विकर्म उसका आपका उसके साथ विनाश हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे रोज विकर्म विनाश होते जाते हैं। तो अमृत वेला बाबा को याद करके बाबा की मुरली पिछले दिन वाली या उसी दिन वाली एक बार रिवाइज कर लो, फिर नहा धो लो, नहा धो के तैयार हो जाओ, तैयार होके मुरली में आ जाओ, फिर बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनना। तो पहला नियम अमृत वेला, दूसरा नियम मुरली, क्लास में बैठ के मुरली सुनना। कई लोग अपने घर में पढ़ते हैं, घर में पढ़ने के नंबर नहीं है, घर में पढ़ने के नंबर बहुत थोड़े से, 10 में से सिर्फ दो ही नंबर है, किंतु क्लास में उस स्थिति में बैठ के मुरली सुनो, उसका प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा की मुरली है। शिव बाबा 0 फ्रीक्वेंसी का है, ब्रह्मा बाबा 1 फ्रीक्वेंसी, उसके एक ही विचार है, सब मेरे बच्चे जल्दी जल्दी फरिश्ते बन जाएं, मेरे बाप मेरे समान बन जाएं, तो अपने घर चलें। तो जब हमारे 2 संकल्प होंगे तो ही वो मुरली अंदर जाएगी, अर्थात वो क्लास में वो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है जिससे वो मुरली अंदर जाती है, तब वो मुरली रिकॉर्ड होती है। और तीसरी बात है अटेंशन, सारा दिन उस मुरली के पॉइंट्स, मुरली क्या है बेसिकली, बाबा का लव लेटर है ना, ये बाबा का क्या है, प्रेम पत्र है ना। तो मुरली कहां रखते हैं, वैसे कहां रखनी चाहिए, प्रेम पत्र कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, दिल के पास है ना, और प्रेम पत्र कैसे कितनी बार पढ़ते दिन में, दिल के पास रख के, जैसे देखते आसपास कोई नहीं है जेब से निकाला, देखा, मुस्कुराए, जेब में रख दिया, है ना। तो ऐसे दिन में कम से कम 21 बार पढ़नी चाहिए। कितनी बार? 21 बार। कितनी बार? 21 बार। पूरी मुरली की बात मैं नहीं कह रहा हूं, चलो मुरली के एक पॉइंट पढ़ लिया, मीठे बच्चे पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया, धारणा के लिए मुख्य सार पढ़ लिया, बीच में को लाइन अंडरलाइन की वो पढ़ ली, अब भले आपको मुरली नहीं मिलते सेंटर से, आप कागज पे नोट कर लें और जेब में रखें, और जितनी बार मुरली रिवाइज करेंगे, ये मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, जितनी बार मुरली रिवाइज करेंगे आप, उतना टीम आपकी मन पॉजिटिव होता जाएगा। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता माना 100% पॉजिटिव टीम। फरिश्ता माना 100% पॉजिटिव टीम। 100 फरिश्ता माना 100% कॉन्शियस माइंड, जिसमें ना ज्यादा सबकॉन्शियस भी जीरो है और अनकॉन्शियस भी जीरो है। ये सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म के पाप कर्म है और अनकॉन्शियस माइंड पिछले जन्मों के पाप कर्म है। इसलिए आज चाहते हैं हम करना, कंट्रोलिंग पावर नहीं है मन पर, रूलिंग पावर नहीं है, क्योंकि 90% मन हमारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है। तो जो जो हम सच्चा ब्राह्मण बनना माना सबकॉन्शियस खत्म हो जाना, जिसमें बेहद की फीलिंग आ जाएगी बाबा को, और सच्ची दिल माना, जिस दिल में सिर्फ ABCD हो, जिस दिल में सिर्फ क्या हो, ABCD हो, जिस दिल में सिर्फ ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा, साथी और साक्षी की स्थिति हो, वो है सच्ची दिल। ऐसे सच्चे दिल पर साहब राजी है। साहब राजी माना वैसी दिल पर कौन है, उस दिल में दिलाराम आके बैठ जाता है। दिलाराम माना कौन? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर आके बैठ गया। तो विवेक हमारा ईश्वरीय हो जाता, बुद्धि हमारी दिव्य हो जाती, चित्त आनंद स्वरूप हो जाता, और स्मृतियां फिर हमारे कंट्रोल में आ जाती, कॉन्शियस माइंड हमारा होने लगता। अब ये स्मृति में ABCD भर लेते हैं, उसे बार बार रिवाइज करते हैं, मतलब मनन करते हैं, और रियलाइज माना उसको मनन, चिंतन, मंथन और सिमरण करते हैं। चिंतन, मंथन और सिमरण। मुरली भी क्या है बेसिकली? मुरली देखें तो मुरली क्या है? मुरली बाबा डिफरेंट डिफरेंट रमणीक तरीके से, गुह्य तरीके से एक एक बात को समझाता है, ABCD को गहराई से समझाता है। तो मुरली भी बेसिकली ABCD ही जैसे है। तो मुरली ABCD खाली ड्राई हो जाता है, किंतु बाबा की मुरली वही ABCD को बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरह से बहुत प्यार से समझाता है, गहराइयों में ले जाता है, कभी लहरों में ले जाता है, कभी गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। तो उसको फिर बार बार रिवाइज करो, जितना रियलाइज करेंगे ये 100% पॉजिटिव टीम हमारी बनती जाती, वृत्ति हमारी आत्मिक होती जाती, भावना शुभ और शुद्ध और शुभ होती जाती, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी होते जाते। इस तरह से हमारा धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे खत्म होता जाता, और पूरा मन हमारा आते आते, जब हमारा मन, जब हमारी सातों गुण 50% से ऊपर हो जाएंगे, 21वां जन्म आते, मतलब 63 जन्म पूरे होते होते जब 21वां जन्म आएगा, तो हमारे से फिर कोई, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड लगभग खत्म हो जाएगा, और तब हम फरिश्ता बनेंगे, वो होगी हमारी फरिश्ता स्थिति। तो 100% हमारी फरिश्ता स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फरिश्ता, जैसे मैं आपको यहां बता दूं मनसा सेवा कैसे करेंगे लास्ट में, तो जब, तो मैंने बताया, तो क्या बताया आपको, अमृत वेला, मुरली और अटेंशन, कम से कम 21 बार, 21 जन्म का राज भाग पाने के लिए 21 बार मुरली के पॉइंट्स जरूर रिवाइज करें, और फिर बार बार उनके ऊपर मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते जाएं, जिसे स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। और फिर ऐसा करते करते क्या होगा, सोने के पहले सच्चा चार्ट बाबा को लिखें, सच्चा लेटर बाबा को लिखें, हर बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब जब हम गलती करते हैं, मर्यादाओं के खिलाफ जाते हैं, तब तब हमारी फ्रीक्वेंसी, विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मान लीजिए मैंने योग किया, सुबह योग किया, मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, किंतु मैंने सुबह सुबह मुरली में जा रहा था, रास्ते में किसी का फोन आया या किसी ने कुछ मुझे मैसेज दिया या कोई मुरली के बाद किसी ने मुझे कुछ कहा या पेशेंट सीरियस हुआ तो मैं हॉस्पिटल गया, वहां किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ पलट के जल्दी में जवाब दे दिया, तो मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एकदम 2 से 10 हो जाएगी। एक गलत काम और हुआ 10 से 15 हो जाएगी, एक गलत काम और किया 15 से 20 हो जाएगी, एक गलत काम और किया 20 से 25 हो जाएगी, एक गलत काम और किया 25 से 30 हो जाएगी, है ना। कि तो सोते समय मैं जब रियलाइज करता हूं तो जैसे जैसे अपना अपनी गलती को स्वीकार करता जाता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी वापस कम होती जाती है, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। तो लेटर लिखते लिखते ही तो बाबा को दिया 5 हो गए, चार्ट भरा 4 हो गई, पैसे बैठा बाबा की गोद में जाते ही एकदम ऐसे करते ही नींद आ जाएगी, गहरी नींद में चले जाएंगे। तो सोने के पहले बाबा को लेटर और चार्ट देके बाबा को, ये हमारे 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और लेटर और चार्ट राइटिंग, ये 4 नियम सच्चा ब्राह्मण सदा फॉलो करता है कितना भी बिजी हो। और बिजी शब्द जो है बेसिकली मन की बात है, जब हमारे विचार तेज चल रहे होते हैं तो हम बिजी महसूस करते हैं। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नहीं था, थोड़ी सी बात भी लोग मुझे कहते थे वहां पर लेक्चर देने आ जाना, वहां पर मैं कहता मैं बिजी हूं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, जबकि 2-2 घंटा हम ऐसे बैठ के वेस्ट कर लेते थे, घूमने चले जाते थे, ऐसे गप मारने में वेस्ट कर लेते थे, गप माना किसी दोस्त से बातचीत करने शुरू की तो उससे बात करते गए, और एक मन में बहुत विचार रहते हैं ना तो आदमी बिजी महसूस करता है। क्योंकि जब बाबा की याद द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हमारे विचारों की शक्ति कम हो, विचार कम हो जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 विचार रह जाते हैं तो हम इजी महसूस करते हैं। जैसे हमारी दादी जानकी जी हैं, उनकी डेल्टा रिदम है, हमेशा डेल्टा रिदम, 2-3 विचार ही रहते हैं हमेशा दिमाग में, उसे डेल्टा रिदम कहते हैं। तो दादी कभी नहीं कहती मैं बिजी हूं, दादी हमेशा कहती मैं बहुत ईजी हूं, दादी को कभी भी कुछ भी कहो नहीं बहुत इजी हो, हम कहते दादी आप बहुत बिजी हैं, कभी इंट्रोडक्शन करने में कहते हैं दादी बहुत बिजी होते हुए भी हमारे बीच आई, दादी कहते गलत गलत बोल रहे हो, मैं बिजी नहीं हूं, मैं बहुत इजी हूं। तो ये बिजी और इजी हमारे विचारों के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो जैसे से आप मेडिटेशन माना क्या है, मेडिटेशन शब्द आया मेडरी से आया है, मेडरी माना टू हील, जो हमारी पुरानी भावनाएं, पुरानी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हुई हैं, चोटें लगी हैं मन में, दिल में चोटें, उसको भरती है ये, तो इसको हम गहराई से समझें। तो जैसे जैसे हम ये हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, फरिश्ता बनते जाए, फरिश्ता माना जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अर्श पे रहने वाला, आसमान पे रहने वाला, ऊंची स्थिति में रहने वाला। अब इसकी हम मनसा सेवा में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मनसा सेवा कर, अंत की सेवा कैसे होगी, सिर्फ मनसा सेवा होगी, बाबा ने कभी सुनने सुनाने का पार्ट खत्म हो गया, अभी सेवा करो, मनसा सेवा करो। लोग अभी अपने घर वाले प्रभावित नहीं होते, आप बच्चों को बोलते हो ना कि ऐसे ऐसे करो, आओ मुरली सुनने चलते हैं, कहेंगे नहीं आप, हमने देखा आप मुरली सुन के क्या करते हो, है ना, गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, आपसे तो हम अच्छे हैं, है ना। तो बच्चों को कभी भी ज्ञान मत सुनाओ, कर्मों से सिखाओ, कर्मों से सिखाओ, कर्मों से अपने अंदर ऐसे कर्म लेकर के, अपना चेहरा और चलन, चेहरा माना मन और चलन माना कर्म, इतना ऐसे बनाओ मनसा सेवा के आधार पे, इसकी योग के आधार पे, कि बच्चों को भी कशिश हो गए कि मेरे पापा मेरी मम्मी ऐसे चलते हैं, इतने शांत रहते हैं, इतना धीरेता उनके अंदर, सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं भी ऐसा कैसे बनूं। तो आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार भी तभी फॉलो करेंगे। तो इसका मैं आपको बताता हूं, तो जब आपके 15 विचार हो रहे होते हैं, 15 विचार, तो आपका ऑरा, ये ज्ञान योग, ज्ञान पवित्रता शांति, 7 एनर्जी जो मैंने बताई, वो आपके अंदर ही अंदर रहती है। जब आप के विचार 8 हो जाते हैं तो 6 इंच के आसपास वो एनर्जी आपके आसपास फैल जाती है, जब आपकी 6 हो जाती है, 8 पर 6 इंच और 6 होने पर लगभग 16 फुट हो जाती है, कितने फुट, 16 फुट, मतलब 16 फुट की दूरी तक वो शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी फैल जाती है। इतनी दूर में कोई भी व्यक्ति उसमें आता है तो वो उसको शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति होती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती है, 5 होने पर 64 फुट और 4 होने पर 64 को 4 से गुना करो, 256 फुट तक आपकी एनर्जी फैल, मतलब 256 फुट तक, मतलब ये हॉल की वहां तक लगभग 250 फुट का हॉल है लगभग, यहां से उस हॉल के उस कोने तक क्या होगा, शांति प्रेम खुशी के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। जैसे आपने देखा दादी जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, दादी को 3-4, तो दादी जब आती है सारा हॉल कैसा हो जाता है, सुख शांति प्यार के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, होता नहीं होता। तो ये बेसिकली आपका आभा मंडल है। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना हमारी फ्रीक्वेंसी विचार कम चलने लगते हैं, और पॉजिटिव विचार होते हैं, कम विचार होते हैं, शक्तिशाली विचार होते हैं, और उनकी एनर्जी दूर दूर तक फैलती जाती है। 3 होंगे तो 256 को फिर 4 से गुना कर दो, कितना हो गया, 2 होंगे तो कितना, 256 को उसके उसको उसको फिर 4 से और गुना कर दो, है ना, कितना किलोमीटर तक हो गया, है ना, और 1 होगा तो परमधाम में पहुंच गए, 2 होगा तो सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, है ना। सूक्ष्म वतन से फिर कितनी सेवा कर सकते हो, पूरे देश की सेवा कर सकते हो, मतलब पूरे देश में, एक पूरे देश में, एक पूरे शहर में आप वही जो जो आप सोचोगे वहां पर सूक्ष्म वतन में वो सारे उस एरिया को मिल जाएगा, शांति प्यार खुशी आत्माओं में वो हिम्मत की टांग मिल जाएगी। वो आना तो चाहते हैं किंतु हिम्मत की टांग नहीं है, मतलब बुद्धि में वो हिम्मत नहीं है, विल पावर नहीं है, तो आएंगे, उनको हिम्मत की टांग मिल जाएगी, उनको टच होगा घर बैठे बैठे, है ना। और जब हम परमधाम सबसे टॉप स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो कल बाबा की मुरली थी, जब टॉप स्थान माना परमधाम पे पहुंच जाते हैं तो सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकते हैं। हर आत्मा को ये टचिंग आएगी कि कोई हमें बुला रहा है, है ना? उनको अंदर से आत्मा जागृत होगी उनकी, उनके उनको जैसे बैठे बैठे अपने आप साक्षात्कार होने लगेंगे। तो ये है मनसा सेवा। तो सच्चा ब्राह्मण माना जिसका मन और बुद्धि विशाल हो, मन मना भव मना, जिसके मन में अर्थात स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में सिर्फ बाबा हो, बाबा के सिवा कुछ भी ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, स्मृति में ही बाबा भरा रहे, वृत्ति में भी बाबा हो, भावना में भी बाबा हो, संकल्प में भी बाबा हो, यह है मन मना भव। तो मन मना भव से मध्याजी भव होंगे अर्थात देवता बनेंगे, फरिश्ता स्व देवता बनेंगे, तो उससे हमारी फरिश्ता स्थिति आएगी, और फरिश्ता स्थिति में जब होंगे हम तो उससे फिर हम सदा बाबा की गोद में बैठ करके सारे विश्व को सकाश देते रहेंगे, अर्थात हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, बुद्धि माना दिल हमारी सच्ची होगी जिसमें ABCD समाया होगा। तो बेसिक राज यही है, सारी क्लास का सार यही है कि इस ABCD को बाबा रिवाइज करते जाओ। बाबा 3 बिंदी कहता है, बच्चे मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बीत गया वो बिंदी, इसको और मतलब आकर्षण रूप देने के लिए ये वर्ड बनाया गया ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। जितना इस ABCD को हम बार बार रिवाइज करते हैं, अर्थात मनन करते हैं, अंदर अंदर महसूस और साथ साथ अनुभव करते जाते हैं, हमारे विचार कम होते जाते, विचार कम होते होते हमारी दिल से कॉन्शियसनेस से अपने आप देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ निकलते जाते, हमारी विवेक ईश्वरीय होती जाती, बुद्धि दिव्य होती जाती, और हमारा चित्त आनंद स्वरूप होता जाता, शांत एकाग्र और आनंदचित होता जाता, और स्मृति में ABCD भर जाता, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाती, भावना शुभकामना हो जाती, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी हो जाते, अर्थात हम फरिश्ता बन जाते। 100% कॉन्शियस माइंड माना 100% कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, ठीक है। तो फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके लिए ये 4 नियम हमें अपनाने की आवश्यकता है। जब भी किसी को देखो हमेशा शिव बाबा को बीच में रख लो, शिव बाबा ट्रांसपेरेंट है, ब्रह्मा बाबा भी ट्रांसपेरेंट है। किसी को डायरेक्ट देखा तो फंस जाते हैं, प्रभाव में आ जाएंगे या लगाव झुकाव टकराव में आ जाएंगे। 4 दुश्मन है ब्राह्मणों के, लगाव झुकाव टकराव और प्रभाव, किसी चीज के किसी से भी, लौकिक चाहे अलौकिक, किसी में ना जाओ। और इसके लिए 4 परहेज हैं ताकि हमारी स्थिति बढ़ती जाए। पहला है पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता, अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ये स्थिति हो। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अमृत वेला बढ़ेगा, उतना योग अच्छा लगेगा, उतना मुरली अंदर ज्यादा अंदर बैठेगी, रिकॉर्ड होगी, उतना अधिक बार बार मुरली पढ़ने को दिल करेगा, नहीं तो जेब में मुरली पड़ी रहेगी, याद भी नहीं आएगी मुरली पढ़नी है ना। और लेटर भी सच्चा लिखा जाएगा, बाबा को सच्चाई से लेटर और चार्ट भर सकेंगे। और फिर शुद्धन, जितना हम बाबा की याद में शुद्ध सात्विक अन्न, शुद्ध सात्विक अन्न माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में सात गुणों को बढ़ाने वाला अन्न खाना, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी रोटी है ना, दूध, ये चीजें हैं सात्विक भोजन, अंकुरित दलिया, ये भोजन चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ। राजसिक माना पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां है ना, इनसे आलस और अबेलापन पैदा होता है। तामसिक माना नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना, बासी खाना, बोतल कैंड फूड्स खाना, उससे उत्तेजना पैदा होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जागते हैं, चिंता भय जागती है, जल्दीबाजी पैदा होती है। तो शुद्ध सात्विक अन्न खाएं और शुद्ध सात्विक सैर, बाबा की मुरली के बाद 45 मिनट बाबा की याद में सैर करो, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करो। तो ये जो है हमारा शुद्ध अन्न। तीसरा सत्संग, तीसरा प्रे सत्संग, सिर्फ बाबा एक सत्य है और मुरली उसकी सत्य है, तो बाबा और मुरली का संग करो। इसलिए एक बात कही जाती है, एबीसीडी करो पर ई और एफ मत करो। ई माना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा माना मन मत और परमत, किसी गुरु मत, किसी ने कहा है तुम ये कर लो, अपनी तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम ये खा लो, तुम ये हठ योग कर लो, प्राणायाम कर लो, शवासन कर लो, ये हमें नहीं, ये मुद्रा लगा लो, ये बाबा का योग नहीं। हठ योग और राजयोग कभी इकट्ठे नहीं चलते हैं। शरीर में कोई रोग है बाबा की, बाबा से पूछो, सातों गुणों का अभ्यास करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे, अपने आप रोग सब खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर की दवाई ले लो, अच्छे डॉक्टर की दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। बाबा आपको बताएगा बच्चे उस डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले, ठीक हो जाओगे। बाबा की श्रीमत पे, बाबा हमारा डॉक्टर है, बाबा हमारा सर्जन है, बाबा को याद करो, बाबा बताएगा बच्चे क्या करना है, कैसे योग का प्रयोग करना है, बाबा को याद करो, ठीक है। और फिर लास्ट है दैवी गुणों में व्यवहार। कभी किसी से कोई कैसा कुछ मर्जी करे, गिलानी करे, निंदा करे, आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे, कभी उसके प्रभाव में ना हो, बस सत्यता का व्यवहार करे, निर्भयता का व्यवहार करे, अंतर्मुखी रहे, सरलता नम्रता उदारता मधुरता सहनशीलता धैर्यता गंभीरता, संतुष्ट रहे, हर्षित मुख रहे, दृढ़ता पे रहे, आज्ञाकारी बाबा के और बड़ों के आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे यज्ञ के प्रति भी और बाबा के प्रति भी, और क्या करें, और हम फरमान बरदार। फरमान क्या है बाबा का, पांच बातें हैं फरमान में लास्ट में, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, पहले इनको भूलो, बुद्धि से निकालो, फिर अपने को आत्मा समझ, फिर मां में कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे, तब ये विक्रम जो रिकॉर्ड है सब खत्म हो जाएंगे, और तब तुम पावन सतो प्रधान बनोगे, और पावन सतो प्रधान बनोगे तो समान बन के मुझसे मिलन बना सकोगे, तब हम बाप से समान बन के मिलन बना सकेंगे, तब हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। हमारी सूरत से कौन प्रत्यक्ष होगा, बाप प्रत्यक्ष होगा, ठीक है, हमारे चेहरे चलन से बाप की सेवा होगी, और तब हमारा बाबा चारों तरफ नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का। ओम शांत।
हंसती हर एक जिंदगी।